लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। सदाचार संबंधी सूक्तियों से सम्मिलित यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। सूक्ति ग्रंथ में प्रज्ञा, न्याय, धर्म, विनम्रता, ईमानदारी, प्रेम और धैर्य के वर्ण का मनुष्यों को परामर्श दिया गया है ताकि मनुष्य इन मूल्यों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल और साकार बना सके। वह यह याद रखे कि प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्व सृष्टा और सर्व पालक हैं, जिनकी आज्ञाओं का पालन कर मनुष्य सुख और शांति में जीवन यापन कर सकता है। तीन प्राणियों की चाल मनोहर है और चार की ठवन आकर्षक। सिंह जानवरों में सबसे शूरवीर, जो किसी को पीठ नहीं दिखाता। इठलाता हुआ मुर्गा, बकरा और अपनी सेना के आगे आगे चलने वाला राजा। यदि तुमने घमंड के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य किया या बुरी योजना बनाई है तो चुप रहो, क्योंकि दूध मथने से मलाई बनती है, नाक पर प्रहार करने से रक्त बहता है और क्रोध करने से झगड़ा पैदा होता है। श्रोताओ, ये थी सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय के 29 से लेकर 33 तक के पदों में निहित आगूर की सूक्तियां। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इनमें आगूर चार अद्भुत चीजों तथा राजसीपन के चार उदाहरणों को समझाने के लिए तीन और चार संरचना का उपयोग करता है। जानवरों में सबसे अधिक शक्तिशाली शेर गर्व के साथ चलता है और अपना साहस एवं राजसीपन प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार मुर्गा, बकरा और सेना के आगे आगे चलने वाला सेनापति अपनी तेजी, ताजगी और दृढ़ संकल्प का परिचय देता है। आगुर का कहना है कि हम मनुष्य भी इनके सदृश तेज और राजसी बन सकते हैं, बशर्ते कि हम आलस, जिद्दीपन और घमंड का परित्याग कर अपना मन अपने कामों में लगाएं। उक्त सूक्तियों में बुराई के विरुद्ध भी सचेत किया गया है। आगूर कहता है कि यदि आप अपने दिमाग की शक्ति और संसाधनों का उपयोग बुराई की योजना बनाने के लिए करते हैं तो रुकें, अपने मुंह पर हाथ रखें और एक भी शब्द न बोलें, क्योंकि कहता है दूध मथने से मलाई बनती है, नाक पर प्रहार करने से रक्त बहता है और क्रोध करने से झगड़ा पैदा होता है। मतलब स्पष्ट है कि यदि आप किसी चीज को मरोड़ेंगे, उसे निचोड़ेंगे या दबाएंगे तो वैसे ही होगा जैसे दूध को मथने से मक्खन निकलता है और नाक को मरोड़ने से खून निकलता है। क्रोध की अभिव्यक्ति संघर्ष और झगड़े का कारण बनती है। आगूर का परामर्श है कि हम बुद्धिमान और विवेकी स्त्री पुरुषों की तरह ऐसा व्यवहार कदापि न करें। श्रोताओ, यहाँ अभिप्राय यही कि यदि आप खुद को ऊंचा दिखाने या आत्म प्रशंसा की मूर्खता कर रहे हैं तो तुरंत ऐसी आदत को छोड़ दें। तथा स्वतः को दीनहीन बना लें ताकि प्रभु आपको अन्यों में ऊंचा दिखाएं। संसार भर में बिखरे 12 वंशों को पत्र लिखते हुए संत याकूब कहते हैं, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा।
हे परमेश्वर अंतर्यामी, तू ही नाथ हमारा है। हे परमेश्वर अंतर्यामी, तू ही नाथ हमारा है।
श्रोताओ, आगूर के बाद सूक्ति ग्रंथ के 31वें अध्याय में हमें राजा लमुएल की सूक्तियां मिलती हैं। इन सूक्तियों को राजा लमुएल ने खुद अपनी माता से प्राप्त किया था और फिर अपने शिष्यों तक प्रसारित किया था। वस्तुतः आगूर की तरह ही राजा लमुएल के बारे में भी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है। यूदा या इसराइल के राजाओं की किसी भी पंजीकृत सूची में राजा लमुएल को स्थान नहीं दिया गया है। ऐसा शायद इसलिए कि लमुएल मूर्ति पूजक राजा थे तथा उन्होंने इसराइल के वाचा यहोवा यानी कि ईश्वर पर भरोसा रखा और यहोवा के भय से बुद्धि प्राप्त की थी। बाइबल आचार्यों ने लमुएल के बारे में कहा है कि लमुएल नाम का अर्थ है ईश्वर के या ईश्वर से संबंधित। इस नाम का कोई इसराइली राजा नहीं था, इसलिए या तो लमुएल एक विदेशी राजा था या यह लेखक का ही उपनाम है। कई प्राचीन टीकाकारों और यहूदी किंवदंतियों के अनुसार लमुएल, जो ईश्वर से संबंधित था, स्वयं सुलेमान था और उसकी मां बातशेबा थी। बाइबल आचार्य रॉस के अनुसार एक किंवदंती यह भी है कि लमुएल ही सुलेमान था और उसकी सलाहकार थी उनकी मां बातशेबा, जिन्होंने सुलेमान को उस समय सलाह दी थी जब सुलेमान अपनी मिस्री पत्नी के साथ जादू टोनों में लगा रहता था और सुबह की बलि देने में देरी करता था, किंतु इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। सूक्ति ग्रंथ के 31वें अध्याय के पहले ही पद में हमें लमुएल का मानव परिचय मिल जाता है, या बेहतर ये कहा जाए कि 31वें अध्याय की सूक्तियों के स्रोत का पता चल जाता है। इस अध्याय के पहले पद में लिखा है, राजा लमुएल की सूक्तियां जिन्हें उसने अपनी माता से प्राप्त किया था। श्रोताओ, बाइबल आचार्य गैरेट और मैककेन के अनुसार 31वें अध्याय के पहले पद से विराम के चिन्हों में मामूली बदलाव के साथ यह कहा जा सकता है कि लमुएल मस्सा का राजा या मस्सा का एक भविष्यवक्ता था। मस्सा शायद एक उत्तरी अरब जनजाति रही होगी जिसका जिक्र हमें उत्पत्ति ग्रंथ के 25वें अध्याय के 14वें पद में और इतिहास ग्रंथ के पहले अध्याय के 30वें पद में मिलता है। आगे सूक्ति ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 6वें पद में सुलेमान की तरह ही प्रभु ही प्रज्ञा प्रदान करता और ज्ञान तथा विवेक की शिक्षा देता है तथा 30वें अध्याय के पहले पद में मस्सावासी याके के पुत्र आगूर की सूक्तियां जिनमें मनुष्य स्वीकार करता है कि ईश्वर मैं थक गया हूं, मैंने प्रज्ञा प्राप्त नहीं की, मुझे सर्वोच्च का ज्ञान नहीं। इस प्रकार श्रोताओ, लमुएल ने समझ लिया था कि उसके मुख से निकलने वाले शब्द ईश्वर की ओर से कहे वचन थे, ईश्वर की ओर से दी गई भविष्यवाणी या रहस्य उद्घाटन थे जिन्हें उसने अपनी माताजी से प्राप्त किया था। शायद इसलिए कि तिमोती की तरह ही लमुएल की मां भी एक धर्म परायण यहूदी स्त्री थी जिसने अपने पुत्र को यहोवा यानी कि ईश्वर का भय और ईश्वर की प्रज्ञा का ज्ञान दिया था। श्रोताओ, नवीन व्यवस्थान में भी हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि उस युग में धर्म परायण माताएं ही अपनी संतानों को प्रभु ईश्वर की प्रज्ञा का ज्ञान देती रही थीं तथा उनके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा को जागृत करती रही थीं। तिमोती को प्रेषित दूसरे पत्र के पहले अध्याय के 5वें पद में संत पॉल लिखते हैं, तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। वह विश्वास पहले तुम्हारी नानी लोइस और फिर तुम्हारी माता यूनिके में विद्यमान था और मुझे विश्वास है कि अब तुम में विद्यमान है।
हे परमेश्वर अंतर्यामी, तू ही नाथ हमारा है। हे परमेश्वर अंतर्यामी, तू ही नाथ हमारा है। घोर अंधेरा छाई रहा, घोर अंधेरा छाई रहा, तू ही एक सहारा है। हे परमेश्वर अंतर्यामी, तू ही नाथ हमारा है। अवगुण से भरपूर हूँ मैं, अवगुण से भरपूर हूँ मैं, सत्कर्मों से दूर हूँ मैं, अवगुण से भरपूर हूँ मैं, सत्कर्मों।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कस्तल गंदोल्फा में पोप लियो 14वें ने अमेरिका के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, बिजेंटाइन कैथोलिक और लातिनी कैथोलिक तीर्थयात्रियों का स्वागत किया, जो रोम, कुस्तुनतुनिया और निकेया की ख्रिस्ती एकता तीर्थयात्रा में भाग ले रहे हैं। तीर्थयात्रा में अमेरिका के 50 ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, बिजेंटाइन कैथोलिक और लैटिन कैथोलिक तीर्थयात्री शामिल हैं, और इसका नेतृत्व अमेरिका के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स महाधर्माध्यक्ष एल्पिडोफोरस और न्यूजर्सी के नेवार्क के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जोसेफ टॉविन कर रहे हैं। उनका स्वागत करते हुए पोप लियो ने याद किया कि तीर्थयात्रा का उद्देश्य स्रोत की ओर लौटना है। रोम, जहां संत पेत्रुस एवं पौलुस शहीद हुए थे, कुस्तुनतुनिया, जहां से संत अंद्रियास जुड़े हैं, और निकेया, जहां 1700 वर्षों पहले पहली बार ख्रिस्ती एकता महासभा संपन्न हुई थी। पोप ने 2025 में पास्का के साझा उत्सव पर प्रकाश डाला, जिससे ग्रेगोरियन और जूलियन दोनों धार्मिक कैलेंडरों का पालन करने वाले लोगों ने एक ही तिथि पर मनाया। इस उत्सव में सभी ख्रिस्ती एक साथ पास्का अल्लेलुया, मसीह जी उठे हैं, वे सचमुच जी उठे हैं का उद्घोष किया। पोप लियो 14वें ने कहा कि ये शब्द यीशु के दुख भोग एवं पुनरुत्थान का उद्घोष है, एक मेमना जो हमें पाप और मृत्यु के अंधकार से मुक्ति दिलाने के लिए मारा गया। मसीह द्वारा प्राप्त मुक्ति हमें अपार आशा प्रदान करती है और साथ ही हमें आशा के साक्षी और वाहक बनने का आह्वान करती है। पोप ने कहा, मुझे आशा है कि आपकी तीर्थयात्रा पुनर्जीवित प्रभु में हमारे विश्वास से उत्पन्न आशा में आप सभी को पुष्ट करेगी। इस पर गौर करते हुए कि इसके बाद कुस्तुनतुनिया की तीर्थयात्रा होगी, पोप लियो ने तीर्थयात्रों से प्राधिधर्माध्यक्ष बर्थोलोमियो को अपनी शुभकामनाएं देने का आग्रह किया एवं निकेया की महासभा के वर्षगांठ समारोह में पुनः मुलाकात करने की उम्मीद जताई। पोप ने ख्रिस्ती एकता दल की तीर्थयात्रा को उन अनेक संकेतों में से एक बतलाया जो हाल के दशकों की ईश शास्त्रीय प्रगति और उदारता के संवाद को पहले से ही प्रकट करते हैं। विशेषकर पोप पॉल 6वें और प्राधिधर्माध्यक्ष अथनागोरस का संयुक्त घोषणा पत्र, जिसमें 1054 में रोम और कुस्तुनतुनिया के बीच हुए संबंध विच्छेद को हटा दिया गया था। पोप ने कहा, अपनी ओर से हमें भी एकता एवं भ्रातृत्वपूर्ण उदारता के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर सांत्वना दाता से अनुग्रह की याचना करते रहना चाहिए। संत पापा ने अपने संबोधन का समापन एक प्रार्थना से की, हमारे विश्वास की जड़ों की ओर लौटने से हम सभी को ईश्वर की सांत्वना के वरदान का अनुभव करने में मदद मिलेगी और हम उस भले समारी की तरह आज की मानवता पर सांत्वना का तेल और खुशी के दाखरस उंडेलने में सक्षम बनेंगे। पोप लियो 14वें ने इतालवी श्रमिक ट्रेड यूनियन परिसंघ की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस को संदेश भेजा है, जिसमें मानव विकास की सेवा में शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने का निमंत्रण किया गया है। यह आवश्यक है कि समग्र मानव विकास और मानव परिवार की भलाई के लिए सामाजिक संबंधों की एक अधिक मानवीय व्यवस्था साथ ही शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा दिया जाए। पोप लियो 14वें ने यह अपील वैटिकन के राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक संदेश में इतालवी श्रमिक ट्रेड यूनियन परिसंघ की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित करते हुए की, जो बुधवार को रोम के यो जिले में भागीदारी का साहस विषय पर शुरू हुई। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह महत्वपूर्ण संगोष्ठी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सभी के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एक नई प्रतिबद्धता को प्रेरित करेगी। गजा के एकमात्र काते गिरजाघर पर आज सुबह इसराइली सैनिकों का हमला हुआ, जिसमें पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेल्ली सहित कई लोग घायल हो गए हैं। गजा पट्टी के एकमात्र काते गिरजाघर होली फैमिली गिरजाघर पर आज सुबह एक टैंक से हमला हुआ, जिससे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य लोगों को हल्की चोटें आईं, जिनमें पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेल्ली भी शामिल हैं। यरूशलेम के लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बत्तिस्ता पित्साबाला ने वैटिकन न्यूज को बतलाया कि घायलों में से दो की मौत का खतरा है। उन्होंने कहा, हमें ठीक से पता है कि एक टैंक, आईडीएफ का कहना है कि गलती से, लेकिन हमें इस बारे में पूरी तरह यकीन नहीं है, सीधे लातिनी गिरजाघर पौत्र परिवार गिरजाघर पर गिरा, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन चार में से दो की हालत बेहद खराब है और उनकी जान को गंभीर खतरा है। उन्होंने बतलाया कि कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति कम गंभीर है। उनमें पल्ली पुरोहित भी शामिल हैं, क्योंकि वे सभी गिरजाघर में थे। उन्होंने कहा, आज गजा में जो हुआ उसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि गजा में संचार इतना आसान नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वे जल्द से जल्द और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। कैथोलिक प्रेस एजेंसी SIR के अनुसार पौत्र परिवार गिरजाघर में करीब 500 विस्थापित क्रिश्चियन शरण लिए हुए हैं। पोप लियो 14वें ने गजा के पौत्र परिवार गिरजाघर पर हुए हमले के पीड़ितों के लिए गहरा शोक व्यक्त किया है। एक ताज संदेश में पोप लियो की ओर से वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो परोलिन ने लिखा, पोप लियो 14वें को गजा में पौत्र परिवार के जगह पर सैन्य हमले में हुई जान माल की हानि के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ और उन्होंने पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेल्ली और पूरे पल्ली समुदाय को अपनी आध्यात्मिक सामीप्य का आश्वासन दिया है। उन्होंने आगे लिखा, मृतकों की आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर की करुणामयी कृपा के हवाले करते हुए संत पापा शोक संतप्त लोगों की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। वे तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते और क्षेत्र में संवाद मेल मिलाप और स्थायी शांति की गहरी आशा व्यक्त करते हैं। हथियारबंद अपराधी जिन्होंने नाइजीरिया के सेमिनरी में हमला किया था, अब आउची धर्म प्रांत से संपर्क कर तीन अपहृत सेमिनरी छात्रों के लिए फिरौती की मांग कर रहे हैं। दक्षिणी नाइजीरिया के आउची धर्म प्रांत का कहना है कि तीन सेमिनरी छात्रों का बंधक बनाने वाले अपहरणकर्ताओं ने उनसे संपर्क किया है और छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए फिरौती की मांग की है। 14 से 17 वर्ष की आयु वाले इन सेमिनरी छात्रों को गुरुवार 10 जुलाई को नाइजीरिया के एवियानो काडोपी स्थित इमाकुलेट कंसेप्शन माइनर सेमिनरी पर हुए हमले के दौरान बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया था। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।